बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 2 फरवरी दिन शनिवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपने आखिरी अंतरिम बजट में कई लोक लुभावन घोषणाएं की। क्या मनभावन वादों से सरकार मतदाताओं को लुभा पाएगी और क्या ये अंतरिम बजट मोदी सरकार की चुनावी नैया को पार लगा पाएगा? यही है आज बीबीसी इंडिया बोल का विषय। आप भी रखें अपनी बात तर्कों के साथ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811 7000 और 1811 7001 पर। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शेखर अय्यर, लेकिन थोड़ा ठहरेंगे और सुनेंगे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली चयन समिति ने शनिवार को आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया निदेशक बनाया है। शुक्ला सीबीआई के कार्यकारी निदेशक नागेश्वर राव से ये जिम्मेदारी लेंगे। आलोक वर्मा की बर्खास्तगी के बाद से राव इस पद पर थे। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी ऋषि कुमार शुक्ला मध्य प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे की एक अदालत ने पुणे पुलिस को आदेश दिया है कि वो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को रिहा करे। कोर्ट का कहना है कि क्योंकि इसी साल जनवरी 14 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलतुंबड़े को एक महीने की सुरक्षा प्रदान की थी और इस अवधि को पूरा होने से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी अवैध है। प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को प्रतिबंधित माओवादियों से संबंध रखने के शक के आधार पर शनिवार की सुबह 4 बजे मुंबई हवाई अड्डे से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि शीत युद्ध के दौर में परमाणु हथियारों को लेकर हुई संधि को अगर अमेरिका खत्म करने का इरादा रखता है तो रूस भी इसे खत्म कर देगा। एक दिन पहले ही अमेरिका ने ऐसा किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा है कि रूस मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करेगा, लेकिन उन्होंने महंगे हथियारों की खरीद की दौड़ को लेकर भी आगाह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हथियार यूरोप या किसी भी दूसरी जगह तब तक नहीं भेजे जाएंगे तब तक अमेरिका पहले ऐसे नहीं करता।
исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится.
हम ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं कि रूस मध्यम दूरी और कम दूरी की मिसाइलें नहीं बनाएगा और यूरोप या फिर विश्व के किसी कोने में इसे तैनात भी नहीं करेगा, लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक अमरीकी निर्माताओं की बनाई इस तरह की मिसाइलें हमें उन जगहों पर तैनात किए जाने की जानकारी नहीं मिलती। हम इस मुद्दे पर खुले दिल से बातचीत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन हम बातचीत शुरू नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मॉनसून के कारण हुई तेज बारिश के कारण यहां कई जगहों पर सैलाब की स्थिति बनी हुई है। देश का तटवर्ती शहर टाउन्सविल भारी बारिश के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहां सड़कें नहरों में तब्दील हो चुकी हैं, जिनमें कारें, जानवर और कई घरों के मलबे बह गए हैं। पानी से लबालब भर जाने के कारण नजदीकी बांध से पानी छोड़ा गया है, जिसके कारण स्थिति और भी गंभीर हो गई है। ब्रिस्बेन के क्वींसलैंड की प्रीमियर अनस्तासिया पलासिसुक ने चेतावनी दी है कि वो हालात के कारण उपजे खतरों को नजरअंदाज ना करें।
The next 24 to 48 hours are crucial. When we use the words unprecedented and uncharted,
आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। हमने अप्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल किया है और ये अकारण नहीं है। हमारे सामने इस तरह की स्थिति पहले कभी नहीं आई थी। यहाँ भारी बारिश और लगातार बहुत बारिश हो रही है, खासकर टाउन्सविल के इलाके में, जैसा हमने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये थी क्वींसलैंड की प्रीमियर अनस्तासिया पलासिसुक। राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में विपक्ष के नेता और खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर चुके खुआन गुइदो ने देशवासियों से अपील की है कि वो पूरे देश में सरकार विरोधी आंदोलन तेज करें। उनका कहना है कि इन विरोध प्रदर्शनों के जरिए वो मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर इस्तीफा देने और जल्द चुनाव करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं। मिस्र की सेना का कहना है कि देश के सुरक्षा बलों ने पश्चिमी रेगिस्तान के इलाके में हमले की योजना बना रहे 8 चरमपंथियों को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल में, मेरा नाम है संदीप सोनी। कार्यक्रम का विषय आप जानते हैं, नोट कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स 1811-7000 और 1811-7001। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शेखर अय्यर, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
और स्वागत दुनिया भर में हमें सुन रहे तमाम श्रोताओं का। इंडिया बोल में इस बार चर्चा का विषय निकल कर आया है अंतरिम बजट से। मोदी सरकार का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और चुनावी साल में वित्त मंत्री ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, कई जानकारों की नज़र में घोषणाओं के हिसाब से ये पूर्ण बजट जैसा है। श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल करेंगे, उससे पहले शेखर अय्यर आपसे जानना चाहेंगे, इस अंतरिम बजट के बहाने मोटे तौर पर सरकार की क्या रणनीति समझ में आती है आपको?
इतना ही है कि तीन वर्गों को, खास करके किसान और जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर जिसको कहा जा रहा है,
असंगठित क्षेत्र के मजदूर और कामगार,
जी, और दूसरे हैं जो तीसरा जो ग्रुप है वो है लोअर मिडिल क्लास के इनकम टैक्स देने वाले, इन तीन क्षेत्रों पर केवल किया है। और उसका कारण ये है कि ज़्यादा दे नहीं सकते, और इन रिलीफ तो दी है इनकम टैक्स वाला, जो आज की सुर्खियां बनी है सारे अखबारों में, वो यही है कि बस जिनका इनकम 50 या 55 हज़ार होगा उनके लिए कोई टैक्स नहीं है। और ये अपने आप में लोअर मिडिल क्लास जो बीजेपी के लिए सपोर्ट भेज रहा 2014 में, उनको किसी तरह फिर वापस आकर्षित करने का, क्योंकि ये ग्रुप बहुत नाराज़ है, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बार बार यही बात थी कि कुछ नहीं किया।
वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक शेखर अय्यर स्टूडियो में मौजूद हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कार्यक्रम में श्रोताओं को शामिल करते हैं। आज हमारे पहले श्रोता कौन है? हेलो।
हेलो
जी, कौन है हमारे साथ इस समय?
मैं कुद्दूस खान उड़ीसा से बोल रहा था।
जी, अपना नाम बताएं।
मेरा नाम कुद्दूस खान है, उड़ीसा से बोल रहा हूं।
जी जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या
सर, आपका भी स्वागत है सर। मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ सर।
अरे वाह, कितने पुराने श्रोता हैं जल्दी से बता दीजिए।
सर नियर अबाउट 25 ईयर्स से।
अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अब जल्दी से कहिए कि ये जो नया बजट आया है, अंतरिम बजट है, जो सही मायने में कहने को अंतरिम बजट है लेकिन पूर्ण बजट की शक्ल में आया है, आपको लगता है कि ये मनभावन लोकलुभावन बजट मोदी सरकार की चुनावी नैया को पार लगाने में मदद करेगा?
ये लोग उसका मैंने लोग पूरा उसके बजट से समझ गए हैं, मोदी का फेकू मैंने जो है वो बजट से कुछ होने वाला नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं, पब्लिक जो समझ चुका है। ना 15 लाख आया, ना कोई डेवलपमेंट काम हुआ, कि 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, तो लोग समझ चुके हैं इनको वोट इनको उतारना है, ये बजट से कोई खास होने वाला नहीं है।
बहुत शुक्रिया उड़ीसा से हमारे श्रोता। अगले श्रोता के पास चलते हैं, कौन है इस समय हमारे साथ? जी, कोई बात नहीं, दोबारा संपर्क होता है तो बात करते हैं। ये जो हमारे उड़ीसा वाले श्रोता थे, वो जो कह रहे थे बात, वैसी ही एक बात हमारे और भी फेसबुक पर जो पाठक और श्रोता हैं वो लिख रहे हैं, उनका हम जिक्र करेंगे, वो क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास आता हूँ शेखर साहब, आपको लगता है कि अंतरिम बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं वो इलेक्शन के हिसाब से वाकई मायने रखती हैं, वजन रखती हैं, और मतदाता उनको वाकई गंभीरता से लेता भी है?
नहीं, कम से कम जिनका इनकम टैक्स मामला लीजिए, वो तो डायरेक्ट बेनिफिट हो जाएंगे तो उनके लिए तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या ये जो पहले से, अच्छा जिनको पहले से कुछ नहीं मिला है, जिनको लग रहा है जैसे अभी जॉब की बात कर रहे थे, तो उनको जो नाराज़गी आप देख रहे हैं, इसको कैसे बैलेंस कर सकेंगे वो बात है। लेकिन दूसरा किसान को लेकर, जो किसान वाला जो है, जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा तीन चुनाव में बीजेपी के लिए बड़ा प्रॉब्लम बनाया हो, और तीन स्टेटों में हमने देखा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, बार बार बीजेपी के अंदर भी ये है कि किसान की वजह से ही हमारी हार हुई है, उनके लिए इन्होंने ये जो नए एक नोवल टाइप है, ये कांग्रेस के प्लान से अलग टाइप है जो है, उससे उनको लग रहा है कम से कम किसानों को, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम से कुछ देने की कोशिश की है।
ये किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई है, 2 हेक्टेयर तक की भूमि की जोत वाले किसान को सालाना 6,000 रुपये दिए जाएंगे और इसकी पहली किश्त जो है वो 31 मार्च तक इसी साल भुगतान करने की बात कही गई है। तो क्या मान के चला जाए कि किसान का वोट पक्का है?
नहीं, किसान का वोट पक्का नहीं है, लेकिन किसान के लिए कुछ तो मिल जाएगा।
नहीं, क्या इससे किसान की जो नाराजगी चली आ रही थी,
देखिए एक तो कर्जा माफ की, नहीं देखिए बात हो रही थी कर्जा माफ की, अब कर्जा माफ ऐसा मामला है, ये पता चल गया कि देश भर में आप कर्जा माफ करने की वो हालत में ना बैंक है ना सरकार है। और जिन कांग्रेस राज्य सरकारों ने घोषणा की है, कर्नाटक ने पिछले मई में की थी, वहाँ अभी तक पूरा उसको लागू नहीं कर पाया। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, मध्य प्रदेश जैसे राज्य, वो भी देख रहे हैं कि भाई ये पूरा हम नहीं कर सकते। उनकी ये थी कि ऐसा दबाव बढ़ाओ कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ घोषणा कर दे, लेकिन वो नहीं हुआ है। ये जो हुआ है ये केवल क्योंकि कल कांग्रेस की एक प्रकार से कांग्रेस स्ट्रेटजी में भी इस पर थोड़ा सेटबैक है, क्योंकि कांग्रेस सोच रही थी कि एक दिन पहले ही राहुल जी ने छत्तीसगढ़ रैली में बता दिया था कि भाई हम मिनिमम गारंटी लेके आएंगे, मिनिमम गारंटी इनकम यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जिसकी बात अरविंद सुब्रमण्यम ने बात की हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, तो उस तरह कुछ हुआ करके सोचा। लेकिन इन्होंने इस तरह लाया जैसे तेलंगाना के राय बंधु का जो है उस तरह की एक नॉवल मेथड है, जिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये गारंटीड इनकम नहीं है, ये असिस्टेड इनकम है, यानी उस समय बीज खरीदने का या फर्टिलाइज़र खरीदने का उस समय की थोड़ा अमाउंट है, और वो भी बहुत जो किसान 2 हेक्टर के वो जो उसका भी कंडीशन है, लेकिन एक शुरुआत है। और बार बार पीएम का भी आपने देखा हुआ आज के रैलीज में यही कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, तो एक प्रकार से शुरुआत को हाथ में पहले कुछ तो आ जाए, तो ये एक शुरुआत है, क्योंकि किसान संगठन भी कल रिएक्ट किए हैं, वो भी ज़्यादा भाई ये बहुत कम है, ये क्या है।
अच्छा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए 750 करोड़ रुपए दिए गए हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाने की घोषणा की गई है, आपको लगता है गाय के नाम पर वोट मिलेंगे?
नहीं, ये गाय केवल आप हिंदुत्व दृष्टि से मत देखिए, ये दूसरा इसका अप्रोच है कि विलेज इकोनॉमी को ठीक करने की बात है, क्योंकि आज भी डायरी फार्मिंग को लेकर ये केवल ये सोचना, ये हिंदुत्व या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खुश करने के लिए, मुझे नहीं लगता वो केवल वो है, लेकिन डायरी सेक्टर को बढ़ाने देने के लिए, और किसान, क्योंकि आज के किसान केवल खेती पे काम कर रहा है ऐसी बात नहीं है, उसके साथ और भी, क्योंकि अगर किसी कृषि क्षेत्र को आपको प्रोडक्टिव करना है उसमें और चीज़ें भी जोड़नी है, उसमें एग्रोफॉरेस्ट्री है, डायरी फार्मिंग है, उसको एक प्रकार से इंक्रेज करने की, कई राज्य सरकार ने इस प्रकार स्कीम्स रखी है, जैसे हमने देखा शिवराज का मध्य प्रदेश में था, अब कमलनाथ ने गौशाला की बात की है हर जिले में।
ये अलग बात है कि शिवराज सिंह चौहान की तमाम इस तरह की योजनाओं के बावजूद आखिर उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। अच्छा, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कम से कम 10 करोड़ लोगों को पेंशन देने की बात कही गई है, श्रमिक और कामगार क्या इससे खुश होंगे और उनके वोट तब्दील होंगे, हम इस पर चर्चा कर लेंगे। उससे पहले अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं।
हेलो
जी, कौन है हमारे साथ?
सर जी, हम हाफिज कुतुबुद्दीन सुल्तानपुर जिला उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
हाफिज साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या लगता है आपको जो अंतिम बजट के बारे में क्या राय रखते हैं आप?
जी जी, हम बताएंगे आपको अपनी राय, पहले हम आपका खैर मकदम करना चाहेंगे कि हम लोगों को मौका देते हैं, हम नेत्रहीन है, 23 साल से आपका प्रोग्राम हम लेटर नहीं लिख सकते हैं, आपको अपनी आपसे लिख के इजहार नहीं कर सकते हैं, तो आपने मौका दिया। बजट के बारे में सर कहना ये है कि मोदी सर ने जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि कायम करने की बात की, तो सर ये 6,000 देंगे सालाना, कांग्रेस आई 12,000 कर देगी, तो ये कोई मुस्तकिल हल हमें नहीं लगता है, कोई ऐसा हल गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए जो किसानों का मुस्तकिल हल करे। तो श्रमिक वाला तो कुछ समझ में आता है, और हम जानना चाहते हैं विकलांगों के लिए सर बजट में क्या है।
शेखर साहब, आपको कुछ ध्यान आता है, ये चूंकि पूछ रहे हैं तो कुछ आपको ध्यान आता है कि खास तौर पे विकलांगों के लिए इस बजट में कुछ बड़ी बात कही गई है?
इस बजट में नहीं है, पिछले बजट में था।
हाँ,
उसे पूर्व बजट, वैसे स्कीम्स पहले ही चल रही है, कई स्कीम्स हैं उनके लिए, इस बजट में उतना फोकस नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि कुछ नहीं है, क्योंकि पहले जो भी ऑलरेडी ये है, और सोशल सेक्टर के लिए वैसे बढ़ा दिया गया है तो उसमें ऑलरेडी है।
मैं वापस थोड़ा चुनावी और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा को लाना चाहूँगा। असंगठित क्षेत्र के जो कम से कम 10 करोड़ कामगार और मजदूर श्रमिक हैं जिन्हें पेंशन देने की बात कही गई है, आपको लगता है वो इससे खुश हो जाएंगे और सरकार के वोट बैंक में इजाफा करेंगे?
देखिए, ये स्कीम केवल आप, क्योंकि आप केवल इस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, ये चूल्हे का जो चूल्हे गैस देने की बात, ये जो बाकी जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, इसमें एक और एक कार्यक्रम है, स्पेशल फोकस है। तो कि क्या खुश हो जाएंगे, देखिए कोई खुश नहीं होता।
नहीं, ये सवाल इसलिए आएगा बार-बार क्योंकि चुनाव जो है बिल्कुल सिर पर है।
नहीं सर, देखिए वो बात नहीं है, लेकिन जिन जिन क्षेत्र पे अभी तक ध्यान नहीं दिया गया, जो अभी तक ये बात चुनाव मुद्दा नहीं बना, किसान का बात चुनाव मुद्दा है, लेकिन ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लेकर कई बातें हो रही थी। कम से कम एक कॉन्क्रीट एक स्कीम शुरू हुआ है जिसमें कोई कुछ तो शुरुआत है।
एक हमारे श्रोता हैं, पाठक हैं, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर, जुनैद अली उनका नाम है, वो लिखते हैं कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे, उन वादों की पूर्ति को अनदेखा करके महज आयकर छूट की सीमा 5 लाख रुपए और छोटे किसानों को 6,000 रुपए देकर जनता से पुनः जनादेश प्राप्त करना बहुत कठिन है। आपको लगता है कि ये जो 5 लाख तक की सालाना कर योग्य आमदनी है, टैक्सेबल इनकम है, व्यक्तिगत करदाताओं को जो छूट दी गई है, इससे मध्य वर्ग खुश हो जाएगा? उस जो आप कह रहे थे पहले कि बड़ा वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का 2014 के चुनाव में, तो वो संतुष्ट होगा?
देखिए, संतोष से ज़्यादा इनकी अप्रोच थी उनकी नाराजगी कम करने का, क्योंकि पहले से इन वर्गों का नाराजगी थी, भाई हमने पहले से बीजेपी को वोट दिया, रहे हमारे लिए क्या हुआ। लेकिन हर साल जो चेंज होते गया, 2.5 से लेकर 2.5 बना, 2.5 से लेकर 3 लाख बना, अब 3 लाख से लेकर 5 लाख बना है। लेकिन बात क्या है कि भाई अभी जब 5 लाख हो गई, लोग कह रहे हैं भाई 8 लाख क्यों नहीं बनाया, तो संतुष्टि की बात नहीं है। मुझे लगा कि नाराजगी को कम करने की जो कोशिश हुई है और जो प्रतिक्रिया देश भर में आ रहा है, लगता है कि कुछ तो कुछ ये है। और ख़ास करके जो यंग वोटर्स हैं, जिनकी आप सैलरी ब्रैकेट देखेंगे, आज कोई सेल्समैन है, कोई शॉप असिस्टेंट है, या कई जो भी काम कर रहे हैं, जिनकी तनख्वाह 30 से 40 है, उनके लिए हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है। हो सकता है कोई मोटरसाइकिल खरीद ले, कोई स्कूटर खरीद ले। देखिए, पूरा होगा नहीं होगा अलग बात है।
हालांकि एक बलविंदर परमार हैं हमारे पाठक श्रोता, वो लिख रहे हैं कि खाने को नहीं है लेकिन शौचालय बनवा दिया, इनकम नहीं है लेकिन इनकम टैक्स में छूट दे दी। वो रोज़गार का सवाल उठा रहे हैं कि रोज़गार कहाँ है। अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। शीशे के उस पार बैठे हैं राजेश चौहान, स्टूडियो संभाल रहे हैं और अगले श्रोता से हमें जोड़ रहे हैं। जी, कौन है इस समय हमारे साथ? हेलो
जिला सर।
जी, कौन बोल रहे हैं?
अमन सिंह।
अमन सिंह, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
बिहार जिला से बोल रहे हैं।
अच्छा, बहुत स्वागत है अमन जी आपका। क्या लगता है आपको, अंतरिम बजट मोदी सरकार की चुनावी नैया को पार कराएगी, मदद मिलेगी सरकार को?
पहले तो इस बजट को हमको चुनावी नजरिए देखना चाहिए था। ये इंटरिम बजट है तो उस हिसाब से देखा जाए, और ये बजट बहुत ही अच्छा है, इसमें हर वर्ग के लिए देखा गया है। और ये जहाँ तक मुझे याद है कि मैं भी 18-20 साल का हो गया हूँ, अभी तक कांग्रेस ने फार्मर्स के लिए कुछ नहीं दिया था। ये एक मोदी सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, जो कि ये 6,000 रुपए सालाना दे रही है। कम पैसा है, अगर इसको देखा जाए तो ये सरकार अगर लंबे टाइम पर चले तो ये और ज्यादा देगी फार्मर्स को।
बहुत आशान्वित है हमारे श्रोता, बहुत अच्छी बात है। अमन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये बताइए साहब कि इससे पहले की सरकार जो प्री इलेक्शन अंतरिम बजट पेश करती रही हैं और जो अभी अंतरिम बजट आया है, कोई बड़ा बुनियादी फर्क देखते हैं आप इसमें, टारगेट के हिसाब से, घोषणाओं के हिसाब से? फिर हम नतीजों की चर्चा करेंगे।
देखिए, 2009 में
वित्त मंत्री जब पी चिदम्बरम
थे, उन्होंने भी कुछ घोषणाएं की थी स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज का, कुछ उनके लिए कुछ चीज़ों को चेंज कर दी, जो टैक्स लग रहा था उसको चेंज की थी। वैसे 2004 ले लीजिए, 9 की, हमने 14 की बात की, वो चिदम्बरम थे। और 2009 में जब प्रणब मुखर्जी थे, तब उन्होंने ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए इंटरेस्ट सब इन्वेंशन की बात की, यानी इंटरेस्ट का फिर वापसी करना। तो ये जिस जिस क्षेत्र को उनको लग रहा है कि नेग्लेक्टेड है, जिनको राहत पहुंचनी है, उन्होंने ये सरकारें की है पहले भी, ये नहीं है कि हाँ हो सकता है ये पहली बार इनकम टैक्स पे हुआ है, लेकिन बाकी टैक्सों में चेंजेस हुए।
अगले श्रोता को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। कौन है हमारे साथ इस समय? जी कौन है हमारे साथ?
हेलो
जी, जी स्वागत है आपका।
नमस्कार सर
जी। नमस्ते,
हम सीतामढ़ी बिहार से बोल रहे हैं, राम आशीष सिंह कुशवाहा।
कुशवाहा जी बहुत स्वागत है आपका।
जी सर, ये मोदी जी का जो बजट है सर, देश हित में है और इनके बजट से देश में खुशहाली होगा, लोग अमन चैन की जीवन व्यतीत करेगा सर।
कुशवाहा जी ये बताइए, कुशवाहा जी ये बताइए कि ये सब तो ठीक है, आपको लगता है कि ये बजट राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के हाथ मजबूत करेगा अगले लोकसभा चुनाव के लिए?
जी सर, जी सर, भारी बहुमत से जीतेंगे वो।
आपके अपने बिहार में, आपके आपके अपने बिहार में क्या लगता है आपको?
बिहार में भी सर, बिहार में भी भारी बहुमत से जीतेंगे। और ये जो विपक्षी वाला जो जितना वो आरोप लगा रहे हैं वो सब विफल हो जाएगा।
कुशवाहा जी हमारे श्रोता बिहार से, एक पाठक श्रोता त्रिलोक एम नाम से लिखते हैं बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर कि बजट की वजह से चुनाव पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बजट को देख सुनकर जो लोग गठबंधन की तरफ जा रहे थे वो सभी एनडीए की तरफ मुड़ जाएंगे और एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। शेखर अय्यर, आपको लगता है कि अंतरिम बजट के बहाने गठबंधन के समीकरण कुछ इधर उधर हो सकते हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता। चुनाव से पहले जो ऑलरेडी एक एंटी मोदी और एंटी बीजेपी का जो बनने जा रहा है जो गठबंधन, जिसका उसका रूपरेखा कुछ भी हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं बनेगा। लेकिन जितने अलाइज हैं, एनडीए अलाइज हैं, उनकी जो रिएक्शन बीजेपी के लिए अच्छी है कि ठीक है, बजट थोड़ा मॉल चेंज किया है, और जो भी समीकरण बदलने वाली की बात है वो चुनाव के बाद होगा, चुनाव से पहले नहीं होगा।
लेकिन एनडीए के सहयोगी खुश हैं इससे?
कब से कब उनको लग रहा है कि भाई माहौल, क्योंकि एक ऑप्टिक्स जो कहा जा रहा है, क्योंकि जो तीन चुनाव हारने के बाद एक जो नैरेटिव शुरू हो गया था कि भाई बीजेपी हार जाएगी, नंबर नहीं होगी, उसको थोड़ा रिवर्स करने की ये कोशिश है।
तो वो जो तीन चुनाव में हार से जो चोट लगी थी उस पर थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश
नहीं, उससे रिकवरी कैसे करें, क्योंकि उसको तो बहुत बड़ा धक्का है। हाँ। कि इसका रिकवरी समय लगेगा, लेकिन
जहां हारे हैं वहां पे लोकसभा की 65 सीटें
वही वही है, क्योंकि बात है कि क्या बीजेपी दोबारा क्या 282 ले आएगी? सब कह रहे कठिन है, बीजेपी के अंदर भी कठिन है, तो घटेगी तो कितनी घटेगी, उसके बाद घटेगी तो फिर कौन सहायता करेगा, तो ये सारे चीज़ों जो सवाल है। लेकिन ये कैंपेन एक प्रकार से बीजेपी कैंपेन शुरू हो गई है इससे।
अगले श्रोता के पास चलते हैं इस समय। कौन है हमारे साथ? जी Hello? जी कौन है साथ में हमारे?
हेलो, मैं सर बालोत्रा, राजस्थान से, बाड़मेर बालोत्रा से अर्ज कर रहा हूँ सर।
जी अपना नाम बताएं।
सर मेरा नाम श्री राम है।
श्री राम जी बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको ये अंतरिम बजट कितना चुनावी बजट है और कितना वास्तविक बजट है?
सर मैं अपनी बात ये रखना चाहता हूँ कि अपने देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, इस देश के अंदर जो सर इस बार का जो ये बजट आया है, मैं ये बजट की बात नहीं करें, अपन एक बात करें कि जैसे मेरे अनुसार मेरे देश के 130 करोड़ जो देवतुल्य जो नागरिक है उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो राजनीतिक पार्टियां होती है कौन वादा नहीं करती है, कौन दावे नहीं करती है? आप देखिए सर, और कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने अपने सारे 100% दावे पूरे किए हैं? मैं सर ये बात कहना चाह रहा हूँ। जी सर,
जी जी, जी कहिए कहिए।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश हमसे आशा करता है या हम देश से आशा करते हैं, ठीक है ना सर जी? तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे नागरिक जो है इस प्रकार से जो है क्या मानसिकता रखते हैं कि हमारे देश के लिए हमारी सरकार ये नहीं किया वो नहीं किया, देखो ऐसे ऐसे ब्रिज बना दिए, इतने अच्छे से काम मोदी जी ने करवा दी। मैं तो कहता हूँ 70 साल में एक बोलने वाला नेता भी तो देश को मिला है। आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे देश की जो छवि बनी है, हमारे देश के जो प्रभाव बढ़ा है हमारे देश का, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बजट सब कुछ नहीं होता। मैं तो कहता हूँ ये वादा नहीं है, ये अपने आप में भावी देश का निर्माण होने वाला है सर।
बहुत शुक्रिया श्री राम जी, बाड़मेर राजस्थान से। क्या लगता है शेखर अय्यर जी आपको, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी भी पहले जैसी है या पहले के मुकाबले कम हुई है, या भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी अब?
देखिए जितने सर्वेज हुए हैं अभी, वो जिस सर्वेज में इंडिकेशन यही है, आज सबसे अगर ज़्यादा लोकप्रिय नेता है वो मोदी जी है। वो 55% हो, 60% हो, लेकिन हो सकता है 70% नहीं है, 80% नहीं, जैसे 2014 में था। लेकिन इस चुनाव में सवाल यही आएगा कि एक तरफ मोदी, दूसरी तरफ ग्रुप ऑफ पार्टीज जो सरकार इस बीजेपी के खिलाफ है, एक एंटी बीजेपी फ्रंट है, लेकिन लीडरशिप की सवाल बार बार आएगा और लीडरशिप एक मुद्दा बनेगा कि मोदी वर्सेस हु।
क्या इस अंतरिम बजट में ऐसा कोई भी लूप होल, ऐसी कोई भी कमी नहीं थी जिसको विपक्ष पकड़ के जो कहते हैं कि गाय की पूंछ पकड़ के वैतरणी पार कर जाए, कोई ऐसा मुद्दा इस अंतरिम बजट से विपक्ष के हाथ लगा या नहीं लगा?
देखिए, कोशिश हो रही है कि वो किसान को जो देने वाली बात है उसको लेकर कल हमने कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी देखी कि 6000 में क्या होगा, ये हर दिन के लिए तो 17 रुपया बनता है, इस तरह की कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस का दूसरा सवाल है, क्योंकि उनकी तरफ से जो घोषणाएं वो सोच रहे थे वो कैसे देंगे, क्योंकि अपने राज्य सरकार, 3 राज्य सरकार 4 पंजाब भी है उसमें, आप अगर जितने कांग्रेस सरकार अगर जल्दी 2 महीने में कुछ दिखा सकेंगे, भाई हम बेहतर तरीके से किसानों के हाथे में पैसे दे पा रहे हैं, तो उसका फ़र्क हो सकता है। लेकिन समय सबके लिए कम है और चुनौती ज़्यादा है।
समय हमारे पास भी कम है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एक दो श्रोताओं से और बात कर लें। इस समय कौन हमारे साथ हैं?
हेलो नमस्कार, मैं गांव बिंजासर बाड़मेर से मोहम्मद रफीक बलोच बात कर रहा हूं।
क्या बात है, बैक टू बैक एक के बाद एक बाड़मेर से हमारे पास दूसरा फोन आया है। तो रफीक साहब, क्या लगता है आपको, ये जो बजट आया है अंतरिम, कितना चुनावी है और कितना वास्तविक है?
ये तो चुनावी है, तो क्योंकि बीते 4 सालों में कुछ नहीं किया, कम से कम जाते जाते हमें याद तो किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ हमें तो चुनावी ही लगता है, क्योंकि ये चुनाव जीतने के लिए ही किया है और तो इसे कुछ खास नहीं है।
शेखर साहब, आपको लगता है कि मतदाता वोटर जो होता है उसकी याददाश्त कमज़ोर होती है या बहुत अच्छी होती है उसकी? क्योंकि ये मैं कहीं पढ़ रहा था कि ये अब मोदी जी के लिए एक तरह से भरोसे की बात वाली बात आ गई है कि क्रेडिबिलिटी का संकट आ रहा है कि साहब 15 लाख की भी घोषणा की थी फिर बाद में कहते हैं कि साहब वो तो एक जुमला था। तो क्या आप मतदाता इस पे भरोसा कर पाएगा घोषणाओं पे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाद में ये भी कह दें कि साहब जुमला ही था?
नहीं देखिए, ये तो ये जो आप बात रखे यही तो अपोजिशन का कैंपेन है, लेकिन सवाल है कि विकल्प क्या है, विकल्प क्या, कौन सी नेतृत्व है और उस नेतृत्व के लिए कौन मोदी के मुकाबला कर सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, बाकी जो चीज़ों पे जो काम हुआ है, ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज पे और कई कार्यक्रम जो घोषणाएं हुए हैं, वो भी एक प्रकार से बीजेपी की एक इलेक्शन कैंपेन ये बनेगी, प्लैंक बनेगी। तो ये वोटर के सामने यही होगा कि अगर नेतृत्व जो मोदी अभी तक दिखाएं, खास करके भ्रष्टाचार की आपने बात नहीं की, भ्रष्टाचार को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, चल रही है, विपक्ष कह रहे हैं ये विछंट है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि भाई पहली बार ये चीज़ें हो रही है, कभी नहीं हुआ। और काले धन पे एक चीज़ नोट कीजिए, मोदी जी डिमोनेटाइजेशन पे अपोलॉजिटिक नहीं हुए, कल बजट में बार बार जिक्र किया गया, भाषणों में अभी कहते हैं वो कि हमने बहुत कठिनाई हुई लेकिन डिमोनेटाइजेशन ज़रूरी था। इसका मतलब है कि डिमोनेटाइजेशन इश्यू में भी मोदी जी फ्रंट पे खेलना चाह रहे, तो इसका मतलब है कि इस चुनाव में जो मुद्दे हैं मोदी जी जो किए हैं ना किए वो एक मुद्दा रहेगा, लेकिन साथ साथ ये भी दिखाना चाहेंगे भाई हम जितने किए उसको देखिए। और ये कंपैरिजन बार बार जो हो रही है भाई 5 साल और 60 साल, तो ये चलेगा। और मुझे लगता है कि वोटर्स का रिएक्शन अलग अलग होगा जिस राज्यों का भी, नॉर्थ में एक टाइप होगा, साउथ में एक टाइप होगा, यूपी में एक टाइप होगा, तो ये कॉमन रिएक्शन होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वोटर के सामने कई चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि क्योंकि स्थानीय एमपी का भी बात है कि भाई स्थानीय एमपी थे उन्होंने क्या किया उस इलाके के लिए।
तो वोटर पिछले 4.5-5 साल की तरफ ज़्यादा देखेगा या इस अंतरिम बजट की घोषणाओं पर ज़्यादा ध्यान देगा?
देखिए, अंतरिम घोषणा जो है वो एक एक मैं कह सकता हूँ एक एक फ्लेवर हो सकता है, लेकिन जब देखता है तो पूरा 5 साल का देखता है और अपने इलाके का देखता है कि मान लीजिए जिस इलाके में बिजली नहीं था अगर बिजलीकरण आया हो।
बस मैं अब 2 टिप्पणियों के साथ बात ख़त्म करूंगा, कार्यक्रम का समापन करूंगा। रुद्र प्रकाश शर्मा लिखते हैं कि मोदी नाम ही काफ़ी है, और राहुल सिंह लिखते हैं कि इसके बावजूद बहुत कठिन है डगर पनघट की, और घड़ी की सुइयां अब हमें रुकने का इशारा कर रही हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम का समापन का। शेखर अय्यर, आप स्टूडियो में आए, चर्चा को सार्थक बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमेशा की तरह माफ़ी मांगूंगा उन श्रोताओं से जिन्हें आज हम कार्यक्रम में शामिल नहीं कर सके, लेकिन अगले हफ्ते फिर आएगा शनिवार और एक नए विषय के साथ इंडिया बोल लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन bbchindi.com हमेशा आपके साथ है।